नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष उनियाल। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राज्य में वर्ष 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारियों के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक में राज्य की महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने आतंकवाद के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाते हुए नई राष्ट्रीय आतंक विरोधी नीति और रणनीति प्रहार शुरू की और देहरादून में पुलिस ने पिछले दो दिनों में जिले में रह रहे 2000 से अधिक बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राज्य में वर्ष 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारियों के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेला धार्मिक आयोजन के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का प्रमुख पर्व है। केंद्र सरकार से मिली यह राशि कुंभ मेला 2027 को सुव्यवस्थित और भव्य रूप देने में सहायक होगी। इससे आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, यातायात व्यवस्था, पेयजल स्वच्छता, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े कार्यों को गति मिलेगी। श्री धामी ने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से कुंभ मेला 2027 का आयोजन सुरक्षित, सुव्यवस्थित और ऐतिहासिक रूप में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सभी कार्यों को पूरा कर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में व्यय वित्त समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों की कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं के तहत चंपावत जिला मुख्यालय स्थित गौरलचौड़ मैदान में स्टेडियम निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही गोलजू कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत गोलू देवता कॉरिडोर के निर्माण कार्य को भी मंजूरी दी गई। देहरादून के आमवाला तरला क्षेत्र में रिंग फेंसिंग कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 18 करोड़ रुपए से अधिक लागत की आमवाला तरला सीवरेज परियोजना को मंजूरी दी गई। केंद्रीय कारागार सितारगंज के विस्तारीकरण के लिए 38 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई। बैठक में हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और अकेडमिक भवन तथा 100 बेड क्षमता वाले छात्रावास के निर्माण के लिए 26 करोड़ रुपए की राशि को भी स्वीकृत किया गया। पौड़ी गढ़वाल में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर क्षेत्र में आधुनिक बहुमंजिला पार्किंग और 2 बेड के आकस्मिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। प्रस्तावित बहुमंजिला पार्किंग में 500 से अधिक वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें 300 से अधिक 4 पहिया और 200 से अधिक 2 पहिया वाहन शामिल होंगे। परियोजना को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया में आगे बढ़ाया गया है। एक रिपोर्ट।
वन भूतल सहित कुल 4 स्तर का होगा और इसे आधुनिक इंजीनियरिंग मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। इससे तीर्थयात्रा के दौरान यातायात दबाव कम करने और जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि लंबे समय से अव्यवस्थित पार्किंग इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या रही है। वहीं पार्किंग परिसर में 2 बेड का आकस्मिक स्वास्थ्य सहायता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, ताकि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को आवश्यकता पड़ने पर तुरंत चिकित्सा सुविधा मिल सके। इसके साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रतीक्षालय और विश्राम कक्ष की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। परियोजना को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया में आगे बढ़ाया गया है। आवास सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को बेहतर यातायात व्यवस्था, सुरक्षित पार्किंग और आपात चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। अंतिम स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंदरियाल।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के सहयोग से 4th रुड़की जल सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। 23 से 25 फरवरी तक आयोजित यह द्विवार्षिक सम्मेलन सीमापार जल सहयोग और उभरती जल चुनौतियों पर विचार विमर्श का मंच प्रदान कर रहा है। सम्मेलन में सीमापार नदी बेसिन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, हाइड्रो मौसमीय चरम घटनाएं, भूजल स्थिरता, जल गुणवत्ता और जल ऊर्जा खाद्य संबंध जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इसमें विभिन्न देशों के नीति निर्माता, शोधकर्ता, जल विशेषज्ञ और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। आयोजकों के अनुसार सम्मेलन में विभिन्न देशों से 42 मुख्य वक्ता भाग ले रहे हैं, जो तकनीकी सत्रों और चर्चा में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सामुदायिक सहभागिता और जल सहयोग के सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर भी विशेष पैनल चर्चा आयोजित की जा रही है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति प्रहार का अनावरण किया है। यह रणनीति आतंकवाद के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए एक व्यापक व्यवस्था प्रस्तुत करती है। इसमें आतंकवाद को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया गया है।
आतंकी घटनाओं के पीड़ितों के अधिकारों पर वैश्विक सहमति बनाने के लिए भारत अपना प्रयास जारी रखेगा। देश ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक ढांचा तैयार करने की दिशा में कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत अपनी आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति प्रहार को आगे बढ़ाएगा, जिसका उद्देश्य सभी आतंकवादी कृत्यों को अपराध घोषित करना तथा आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों को धन, हथियार और सुरक्षित ठिकानों तक पहुँच से वंचित करना है। भारत आतंकवादी उद्देश्यों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर प्रयास जारी रखेगा। दस्तावेज में भविष्य की उभरती आतंकवादी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाने और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। साथ ही आतंकवाद को किसी विशेष धर्म, जातीयता, राष्ट्रीयता या सभ्यता से जोड़ने के किसी भी प्रयास को सख्ती से खारिज किया गया है। सरकार ने आतंकवाद और हिंसा के प्रति अपनी अडिग शून्य सहनशीलता की नीति को दोहराया है। साथ ही आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति समर्थन की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार किया गया है।
देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल के निर्देशों पर दून पुलिस ने शहरी और देहात क्षेत्रों में व्यापक सत्यापन अभियान चलाया। यह अभियान 15 फरवरी से 1 माह तक चलाए जा रहे सघन सत्यापन अभियान के तहत संचालित किया जा रहा है। 22 और 23 फरवरी को सुबह से ही पुलिस की अलग अलग टीमों ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में संदिग्ध और बाहरी व्यक्तियों की पहचान की। इस दौरान जिले में रह रहे 2205 बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया गया। अभियान में अनियमितता पाए जाने और किराएदारों का सत्यापन न कराने के मामलों में 249 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत चालान कर 24,90,000 रुपए का जुर्माना किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि आपराधिक पृष्ठभूमि छिपाकर रहने वाले संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में देहरादून में सचिव समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास को गति देने के लिए सचिवों और जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने भराड़ीसैंण में प्रस्तावित विधानसभा सत्र की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मानक संचालन प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता और अन्य व्यवस्थाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। नैनीताल में कल विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम सवेरे 11 बजे से डीएसबी परिसर के सेमिनार हॉल में आयोजित होगा। यह आयोजन मेरा युवा भारत नैनीताल, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वय से किया जा रहा है। इस वर्ष युवा संसद का विषय आपातकाल की 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सीख रखा गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय परंपराओं और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवा इसमें भाग ले सकते हैं। इच्छुक प्रतिभागी निर्धारित तिथि को सीधे कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होकर सहभागिता कर सकते हैं। जिला स्तरीय आयोजन में प्रदर्शन के आधार पर 10 प्रतिभागियों का चयन राज्य स्तर के लिए किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक राज्य से 3 श्रेष्ठ प्रतिभागियों का चयन राष्ट्र स्तर के लिए होगा। राष्ट्र स्तर का आयोजन संसद नई दिल्ली में किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राज्य में वर्ष 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारियों के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक में राज्य की महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने आतंकवाद के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाते हुए नई राष्ट्रीय आतंक विरोधी नीति और रणनीति प्रहार शुरू की और देहरादून में पुलिस ने पिछले 2 दिनों में जिले में रह रहे 2000 से अधिक बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।